नमः महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरर्पिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात जो दंडी पादगण ब्रह्मचारीगण सज्जन श्रोता वृंद मातृ और बहन सब लोगों को यथा योग्य मेरा अभिवादन स्वीकार है। भगवान की कृपा से हम लोगों का यहाँ प्रोग्राम परसों और कल निर्विघ्न समाप्त हुआ। हम लोगों का मूल उद्देश्य सनातन वैदिक धर्म, दूसरे रूप में भागवत धर्म, भक्ति धर्म का प्रचार है, वो भी चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों के अनुगत्य में। श्रीमद् भागवत के संबंध में मैंने कल कहा, हमारे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार श्रील सनातन गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी ने और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत की बड़ी सुंदर व्याख्या की है रसी, उसके आधार पर मैं भागवत का कुछ लीलाओं का मैं वर्णन करूँगा। कल हम लोगों ने प्रहलाद महाराज जी की भक्ति के संबंध में बतलाया, किस प्रकार से उनकी रक्षा के लिए नृसिंह देव जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमको कोई वर की जरूरत नहीं, मैं बनिया नहीं हूँ, यदि कोई इच्छा हो तो उसको समाप्त कर दीजिए और जगत के समस्त लोगों का दुख लेकर के मैं भोग करूँ जन्म जन्मांतर और सब लोगों को हमारा जो भजन आपका किया है उसको बोलो वैकुंठ में हुआ। ऐसी सुंदर भक्ति ना, ये भक्ति का विचार है। तत्पश्चात ऋषभ देव भगवान के एक अवतार हुए हैं, उनके सौ पुत्रों में महाराज भरत सबसे श्रेष्ठ थे, उन्हीं के नाम के ऊपर में भारतवर्ष ये नाम पड़ा और उनके नौ भाई थे, नौ जोगेंद्र, जाति पाति से बहुत ऊपर भगवान की अनुभूति संपन्न थे, उनकी कोई जाति पाति नहीं थी और 81 कर्मकांडीय ब्राह्मण थे। इस प्रकार से और नौ जन और सब दूसरे वर्षों के राजा थे, एक ही पिता के इतनी संतान और इतने ब्राह्मण कोई क्षत्रिय कोई का नौ जोगेंद्र, इस तरह से हमारी जाति प्रथा ऐसे ही थी। गुण के अनुसार, गुण नहीं हो तो रावण को भी राक्षस कहा गया, कंस क्षत्रिय नहीं उसको भी राक्षस से ही माना गया, नराधम माना गया, केवल ब्राह्मण के कुल में ब्राह्मण उत्पन्न होने से वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, उसमें ब्राह्मण उचित गुण हो। इसलिए गुण के अनुसार में इनका विभाग किया गया था। ये भरत महाराज आधी उम्र में 50,000 वर्ष आधी उम्र उनकी थी। आधी उम्र में संसार को मलवत प्रत्याग कर दिया। मलवत समझते हैं ना, जिस प्रकार से पैखाना लगने पर उसको पैखाना दूर हो जाने पर चित्त शांत होता है, ऐसे संसार को मल के समान समझा। अनुभूति के अनुसार ये संसार क्या है, ये मल के। इसलिए 50 वर्ष की आयु में इसको दुख का कारण समझकर, समय की बर्बादी समझकर इसको, और भगवान का भजन करने के लिए कांतिक में वन में चले आए। स्त्री पुत्र माता पिता भ्राता राज्य परिवार गृह सबको छोड़ दिया, आए, बहुत दिनों तक भजन किया, किंतु हुआ क्या, वे भावावस्था तक पहुंच चुके थे। भावावस्था माने क्या, आदौ श्रद्धा, साधु संग, फिर दूसरा साधु संग, गुरु करण, गुरु से हरिनाम दीक्षा इत्यादि प्राप्त करना, फिर साधन भजन में लग जाना, इसके बाद में अनर्थ की निवृत्ति, तब बुद्धि की निष्ठा भजन में होगी और आगे बढ़कर के वही रुचि होगी। रुचि होने के पहले तक भय रहता है, रुचि उत्पन्न होने के बाद में भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में सब में रुचि हो जाती है। रुचि परिपक्व होने पर तो आसक्ति होती है, बिना हरिनाम किए, बिना भजन किए, बिना वैष्णव गुरु सेवा किए रहा नहीं जाए, सब समय चित्त भगवान में लगा रहे, वही आसक्ति परिपक्व होने पर भाव होता है। भाव माने शुद्ध सत्व। उस समय में भगवान के जो नित्य परिकर हैं रागात्मिक, उनके अनुगत्य में भजन आरंभ होता है। जैसे किसी को सखाओं के प्रति लोभ है तो श्रीदाम इत्यादि के अनुगत्य में उनका भजन करेगा, कोई वात्सल्य रस से भजन करना चाहेगा तो यशोदा मैया नंद बाबा के अनुगत्य में कृष्ण का अनुशीलन करेगा, कोई गोपियों के अनुगत्य में भजन करना चाहेगा तो गोपियों के भाव में विभुक्त होकर के अनुगत्य में भजन करेगा। उनके भाव उनके हृदय में संक्रमित होंगे और उसकी उपलब्धि करेगा, यह भाव बहुत कठिन है। इसके बाद में जीव का अधिकार नहीं है, उसके बाद में यह शरीर छूट जाने के बाद में तब प्रेम में प्रवेश होता है, तब बोलो वृंदावन में जाएगा। तो इनको भावावस्था तक हुई थी भरत महाराज जी को भजन करते का, किंतु हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद में घर बार तो छोड़ करके आए, स्त्री पुत्र छोड़ दिया। एक दिन भजन कर रहे थे, देखा क्या, एक बाघ ने गर्जन किया और एक हिरण थी वही चल रही थी, हठात बाघ को निकट देख कर कूद गई और वहां एक नदी थी, नदी को पार करना चाहा, उस पार डर के मारे, गर्भवती थी, गर्भ गिर गया पानी में और वो बिचारी उधर में जाकर के प्राण को छोड़ दिया। मानो आंख के इशारे से कह रही है तुम भजन कर रहे हो और तुम्हारे सामने हमारा बच्चा पानी में डूब करके मर रहा है, जरा बचाओ। तो दया आ गई, ये सात्विक दया है। दया होते ही जट उठे और बच्चे को गोदी में उठा दिया, घर ले आए, घर मैंने अपने आश्रम में ले आए। गैया कहीं से मिल गई, उसका थोड़ा सा दूध उसको पिलाने लगे, बहुत जल्दी वो बड़ा हो गया, घास भी चरने लगा और इन्हीं को माता पिता मानने लगा। जब ये भगवान का ध्यान करते, कृष्ण का ध्यान करते, तो वो छोटा सा बच्चा सिर से ऐसे करता, अरे हमको गोदी में ले लो, प्यार करो हमें, बस उसको ध्यान छोड़ करके इस तरह से वो प्यार इतना बढ़ा, कहाँ घर में अपने बच्चों को छोड़ करके आए और अब एक हिरणी के बच्चे पर वो लग गया। यही आसक्ति है संसार की, संसार की आसक्ति सब छोड़ करके साधु हुए और किसी में फिर रम गए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने अब उसको पालन पोषण करना आरंभ किया, यदि कहीं इधर उधर चला जाता तो उसी की चिंता करते, कहते क्या, ओह यह हिरण पृथ्वी के लिए और कितना ये है, अच्छा है, जहाँ पैर रखता है वहाँ पर तपस्या की भूमि, यज्ञ की स्थली बन जाती है, और यदि नहीं मिलता तो इधर उधर घूमते फिरते ध्यान भंग हो जाता, ध्यान ही नहीं कर पाता। एक दिन हिरणों का दल आया और ये हिरणों के दल में मिल करके कुत्ता फांता वो चला गया और उसी समय इनकी मृत्यु, उसी की चिंता करते करते कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और उसी समय में मृत्यु हुई। हिरण की चिंता करते 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 क्या हुआ, दूसरे जन्म में हिरण ही बन करके आए। इसमें एक बात समझिएगा, इसमें एक शिक्षा है, यदि भरत महाराज हिरण की चिंता करते 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 अंत में हिरण बन गए, यदि हम गोपियों की चिंता करते करते और कृष्ण की चिंता करते करते मरे तो क्या होगा, गोपी का शरीर मिल जाएगा, सखाओं का शरीर मिल जाएगा, नंद बाबा जैसा वात्सल्य के भाव वाले गोपियों का शरीर मिल जाएगा और इस संसार को पार कर जाएगा। इसलिए हम लोगों को अंततः मृत्यु के समय में भगवान की याद हो, कृष्ण और उनके परिकरों की याद हो, कृष्ण की केवल चिंतन करने से नहीं होगा, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं और उनकी जो सेवा भावना कर रहा है उनके उन परिकरों को साथ में कीजिए, आपको वो परिकर बन करके कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण बन करके नहीं, कृष्ण नहीं दे सकते वो प्रेम, कृष्ण के अंदर में नहीं है, वो भोग करने वाले हैं, भोगता है, और सेवक लोग क्या है, उनकी सेवा करने वाले। इसलिए सेवकों के बिना अनुगत्य के भजन नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को सेविकों के अनुसार, रूप मंजरी सर्वश्रेष्ठ सेविका है राधा जी की भी, इसलिए उन्हीं की चिंता करते और कृष्ण की चिंता करते करते यदि मृत्यु के समय आ जाए तब तो काम बन गया, किंतु होगा कैसे, अभी से अभ्यास करना है, अभी संसार को मलवत समझें और उसका त्याग कर सकें तब तो हो जाएगा, और नहीं संसार को वैष्णव हो करके भी त्यागी बन करके, लाल कपड़े धारण करके, सन्यासी भी बन करके, इधर उधर से पैसे ला करके सन्यासी बन करके अपना घर बनाएंगे तो क्या होगा, वो घर कहाँ जाएगा, ले जाएगा हमें जहन्नम में लेकर के डुबा देगा। इसलिए गृहस्थ लोग तो ठीक है, जीविका का निर्वाह करते हुए धीरे धीरे उठे, किंतु सन्यासी त्यागी लोग खबरदार, घर बनाने की चिंता में ना पड़े, और नहीं तो ऐसे जहन्नम में डूबेंगे जो अपने सभी लोगों को लेकर के, अपने तो जाएंगे और परिवार के साथ में घर को भी लेकर के डूब जाएंगे, इसको याद रखिए। अब तो भरत महाराज जी हिरण बन गए, किंतु चुके भावावस्था तक प्राप्त कर चुके थे, इसलिए जाति स्मर थे। जाति स्मर माने
पहले जन्म का पाप
याद, पहले याद उनको याद थी हिरण होने पर भी। अब वो हिरणों से नहीं मिलते, वही गोमती के तट पर जहाँ पर गंगा से उसका मिलन हुआ है, यहाँ पर सोनपुर का मेला अब लगता है, उसी जगह में हरि कथा सुनते, प्यास लगती गंगा में पानी पी लेते। और थोड़े दिनों के बाद मृत्यु का समय आया, गंगा नदी में चले गए, भगवान का ध्यान किया। तृतीय जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म, जाति स्मर होने से उनको सब याद है, इसलिए बचपन से ही मानो मुख जैसे बने रहते थे। उसके पिता ने गायत्री मंत्र सिखाने की लाख चेष्टा की, ओम नहीं कहलवा सके, नहीं बोल सका। इस तरह से मुख बंद करके रहा। मृत्यु के समय में उनके अपने बेटों से कह गए, देखो भाई ये मूर्ख है, कुछ समझता नहीं, इस पर दया करना, इसको खिलाना पिलाना। नहीं जानते थे ये कहाँ किस अवस्था में भगवान का ये चिंतन कर रहा है। उसके भैया लोग क्या करते, भाभी लोग रसोई बनती तो गाय भैंस को चुनी भूसी जो देते वही सिद्ध करके इनको दे देती, तो वही खा करके मुस्तंग बने हुए थे। कपड़े की जरूरत नहीं, कुछ भी लंगोटी की भी जरूरत नहीं, कुछ करता तो था नहीं भगवत चिंता। इसके भाइयों ने खेत के मेड़ पर बैठा दिया, यहाँ पर रक्षा करो, तो वो ध्यान में मग्न हो जाते, उसकी चिंता नहीं। एक दिन रहुगण नाम का एक राजा जा रहा था, शायद जा रहा था किनके यहाँ, कपिल देव जी के यहाँ शायद जा रहा था, ज्ञान तत्वों को सीखने के लिए। उसकी पालकी में कहा चार लगे हुए थे, एक बीमार पड़ गया और पालकी में एक आदमी की जरूरत है। उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि देखो तुम किसी को पकड़ लाओ। उन्होंने देखा ये मुस्तंग पड़ा बैठा है यहाँ और मोटा ताजा है, पकड़ करके ले करके ले आए, पालकी में लगा दिया। वो एक चींटी भी नीचे देखते थे, जैसे चींटी है पैर यहाँ न रख करके वहाँ रखते थे, इसलिए मिलता नहीं था। चारों कहारों का पैर मिलना चाहिए नहीं तो पालकी हिलेगी, तो पालकी हिलने लगी। राजा ने ताना मारा, अरे दुबला पतला है चल नहीं सकता, इसलिए चलता नहीं है, ठीक से चलता क्यों नहीं। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं राजा तुम्हें दंड दे सकता हूँ, ठीक से चलो। तो इनको दया आ गई, उन्हीं के वंश में पुरगुज थे ये भरत रघुगण के भी। उन्होंने कहा कौन पतला कौन दुबला है,
कौन मोटा है,
कौन मोटा है,
कौन राजा है,
कौन पतला है, कौन राजा है, कौन प्रजा है। यदि कहार है तो ढोने के लिए ही है, ठीक है, कौन किसको ढुलाई करेगा।
कीर्तन,
हाँ एक कीर्तन कर दो।
हरे कृष्ण
धरो 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 जल्दी।
Thank you.
ज्ञान के लिए मैं जा रहा हूं उसके लिए इसकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रहा। बस झट पालकी से नीचे उतर आया और चरणों में गिर गया। आप कौन हैं? आप वही कपिल देव तो नहीं या कोई ऋषि महर्षि हैं? तो उनको दया के कारण उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूर्वजों में मैं भरत था, याद है भरत की बात? अब तो समझे ये तो भरत ऋषि हैं। और भी श्रद्धा बढ़ गई और तब उन्होंने पूछा, मैं आपके वचनों को कुछ समझ नहीं सका। यह शरीर है जिस प्रकार से एक बर्तन को आग के ऊपर में चढ़ाया जाए और उसमें पानी रख दिया जाए तो पानी में रखने पर उबलने लगता है और चावल सिद्ध हो जाता है। शरीर में आत्मा है ना, शरीर में आत्मा है और संसारिक ताप इसको लग रहे हैं तो उसको जो दुख होता है आत्मा को जरूर दुख होता होगा। आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत और सुखी है, ये कैसे हो सकता है? पानी बर्तन के अंदर में है और बर्तन के अंदर पानी है, उसके अंदर में चावल है और वो गर्म होकर के सिद्ध हो जाता है, तो क्यों नहीं शरीर में जो दुख होता है आत्मा को दुख होगा, जरूर होना चाहिए। तब उन्होंने दार्शनिक भाव में इन चीजों को बतलाया। जो कुछ दुख होता है मन में दुख होता है, मनैव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षये, मन से ही ये संसार है। मन न रहे तो ये शरीर चल नहीं सकता। मन चेतना भास है, आत्मा में दुख नहीं है। मन समाप्त हो जाता है भजन करते 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 भावावस्था में ही, उस समय में फिर वो सुखी हो जाता है। संसार का दुख उसको स्पर्श आत्मा को नहीं कर पाता, वो तो बात दूर है। साधारण भी रुचि अवस्था निष्ठा के अवस्था में ही संसार के दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अभी भजन के समय में कर रहे हैं कुछ और जब थोड़ा उठ जाएगा सुख और दुख जगत के उसको स्पर्श नहीं करेंगे, वो सब समय भगवान की चिंता में लगा रहता है। बहुत से इसके भक्ति रसा में सिंधु में इसके सब उदाहरण दे करके समझाए गए हैं। समझाने के बाद में उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। श्रीमद् भागवत में इसका अच्छी तरह से वर्णन किया। इसी प्रकार से एक दिन वो खेत की मेड़ पर बैठे थे, चोरों ने विचार किया यदि आज चोरी का माल मिला तो इसकी बलि देंगे दुर्गा जी के यहाँ। कुरुक्षेत्र में एक दुर्गा हैं, उनको क्या कहते हैं, भद्रकाली कहते हैं। भद्रकाली होने का भी कारण यही है। तो वो चोरों ने चिंता किया और खूब बाल लगा उनके यहाँ, उन्होंने इनको पकड़ लिया, देखा ये सुलक्षण है और नर बलि देंगे, देवी के मंदिर में ले गए, खिला पिला तो खा लिया, कपड़े बांध दिए लाल, ठीक है, कोई चिंता नहीं मरने की। और थोड़ी देर के बाद में जब खड़ग उठाने को हुआ तो देवी जी एकदम फट गई और खड़ग लेकर के उन सबको काट करके बलि चढ़ा दी और इनसे कहा जी प्रभो आप अपने को इस प्रकार से छिपा करके रखते हैं, इस आशा ना करें, नहीं तो जगत के लोग आपको कैसे पहचानेंगे, आप हमको क्षमा कीजिए। भगवत भक्तों से ये भी डरती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। इस तरह से भरत महाराज जी का चरित्र, इसी तरह से चित्रकेतु महाराज जी का है। सब कुछ था, कितनी उनकी 1 करोड़ स्त्रियां थी, किसी को संतान नहीं। पर्वत ऋषि उनके पास में एक बार आए, नहीं ये दुखी क्यों है, सब कुछ मेरे पास में है, संतान नहीं है, 1 संतान दे दीजिए, तू भगवान का भजन कर, इसमें सुखी रहेगा, संसार संतान से सुखी नहीं रह सकता है, माने नहीं, हमको जैसे तैसे 1 संतान दे। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुमको 1 संतान दो, कुछ दे दिया, कहे जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, अपनी पत्नी को खिला दिया और बोले इसे तुमको जो संतान होगी हर्ष और शोक प्रद होगी। नहीं समझे, कहे पिता हमारी आज्ञा नहीं मानेगा इसलिए कोई दुख सुख होगा, कोई बात नहीं। लड़का चांद के समान बढ़ने लगा, 5 वर्ष धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते कुछ बढ़ा, बहुत ही सुलक्षण लड़का। और जो पत्नियां थी राजा की उनको ईर्ष्या हुई, ये तो हमें नौकरानी की तरफ भी कभी नहीं पूछता, ये अपनी उसी स्त्री के पास में रहता है जिसको लड़का है, इसलिए लड़के को ही मार दिया जाए तो बस झंझट मिट गया। उन्होंने दूध के अंदर में 20 मिला करके बच्चे को दे दिया और बच्चा मर गया। अब तो रानी छाती पीट करके रोने लगी, राजा भी आकर के रोने लगे और उसी समय में पर्वत भी आ गए, बोले भैया किस लिए रो रहे हो, क्या बात हुई, क्या कोई बदलाने वाला नहीं, राजा प्रजा सभी सभी लोग रो रहे हैं, अरे छोटी सी बात के लिए तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आ तो ये मर गया लड़का, कहाँ मर गया, गया तो आएगा तो पटना गया, दिल्ली गया, मर गया तो आएगा तो नहीं, वहाँ से कोई नहीं लौटता है, कहाँ गया, ये तो सो रहा है, बातचीत नहीं करता है, तो बातचीत करो, जिसको तुमने पुत्र माना, बेटा माना, लाड प्यार किया, वो तो अभी सो रहा है, आ तो अब नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, तो इसकी आत्मा निकल गई। आत्मा को देखा कितना मोटा काला गोरा सांवला कैसा था, कितना लंबा चौड़ा था, तो कभी नहीं, तो उसके लिए क्या रोक, जिसको कभी देखा नहीं, कोई संबंध नहीं हुआ, उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? तब वो समझे, देखो एक कबूतर थी, उसकी एक पत्नी थी कबूतरानी, अंडे दिए और घोंसलों में उनको पालने लगी। एक दिन चारा लाने के लिए वो जंगल में दोनों गए। एक नदी के किनारे हरे भरे मैदान में एक पेड़ की डाल पर दोनों बैठे और प्रेम की बातें करने लगे। थोड़ी देर में देखा जे वहाँ मैदान पर चावल के छोटे छोटे कण पड़े हुए हैं। पत्नी ने कहा, कबूतरानी ने, कबूतरी ने कहा, प्रिय चलो कुछ चावल के कण अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी चुन ले। अरे ये जंगल में कहाँ से है, बनिए का घर है या कृषक का खेत है? यहाँ ये बहेलिया का काम है, कोई बहेलिया है जाल लगाए हुए पकड़ लेगा। नहीं मानी, चली गई, चुभने लगी, इतने में खींच दिया जाल, उसके अंदर में पड़ गई। अब तो ये उसके विरह में बिलबिलाता हुआ वो भू आया, ये जाल के बाहर से और वो भीतर से दोनों चोंच मिला करके रो रहे हैं। ये कहता है, मैं मर जाता तू बची जाती तो बच्चों का पालन पोषण कर सकती थी, मैं तो कर नहीं सकता। और ऐसे दुख में रम गया बहेलिया वहाँ से फंसता हुआ, तीर धनुष लेकर बाण मारा, लगे कलेजे में और गिर गया। फिर इसको और दोनों को पैर पकड़ करके बांध करके रख करके ले गया घर में, भून करके खा लिया। कहते क्या है, मृत्यु हमारी सिर पर है, संसार में इस प्रकार से न फंसो जब मृत्यु को मत देख सको। मृत्यु को देखो, आज न कल न परसों न बरसों, मरना जरूरी है। जो कुछ कमाई किया साथ में नहीं जाएगा, इसलिए समय रहते हुए छे तो। अब उसी समय में नारद भी उनके साथ में थे, लड़के को जिला दिया, जीना चाहता है, माता पिता को देखो। उसने कहा, जे कौन जन्म के माता पिता, मैं भी इनकी कितने बार माता पिता हुआ हूँ, कोई मुझे याद नहीं जे कब के माता पिता, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहता, मैं वहाँ पर भगवान का भजन करके पार कर जाऊँ। और फिर उन दोनों को मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में वही चित्रकेतु महाराज थे। और फिर बहुत लंबी कहानी है, हम लोग इसके बाद में कृष्ण की लीलाओं में आना चाहते हैं। कृष्ण जी सर्वशक्तिमान है, एक ही साथ में मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल में भी। लोग समझते हैं कि मथुरा में ही जन्म हुआ, किंतु नहीं, मथुरा में आंशिक रूप में नारायण के रूप में, वासुदेव के रूप में जन्म हुआ, और गोकुल में नंद बाबा जसोदा मैया के यहाँ पूर्ण कला में सर्वशक्तिमान सर्वजस्वर्य युक्त माधुर्य युक्त ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मुरलीधर का जन्म हुआ। भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं लिखने पर भी बतलाया है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंदस्तु उधर में वसुदेव देव की कोई उत्सव नहीं मना सके, और नंदस्तु नंद ने अपने पुत्र के जन्म होने के बाद में लाखों गायों का दान किया और ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी नाड़ी छेदन वहीं पर हुई संस्कार। मथुरा में नाड़ी छेदन नहीं है, और साथ साथ में एक बहन भी पैदा हुई अनुज, पीछे से अनुजा जोग माया जी, उसी को बस देव जी लेकर के गए थे और कंस के हाथों से निकल गई। और कहा जे तुम्हारा जन्म मरने वाला दूसरी जगह जन्म ले लिया। इस प्रकार से कृष्ण ने कुछ दूर के बाद ही पूतना इत्यादि राक्षसियों को मारा। हमारे सीमांकित महाराज जी अब इसके संबंध में कुछ बतलाएंगे।